ओम शांति। सबसे पहले हम सभी ज्ञान सरोवर वालों के तरफ से आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। आप पूछेंगे क्यों? क्यों? क्योंकि जिस चीज के हम बहुत इंतजार कर रहे थे और जून जुलाई अगस्त भी चला गया लेकिन वो चीज नहीं आई, तो आप आए, बाहर भी आई और बारिश भी आई। इसलिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया है। इसलिए हम सभी तालियां बजाएंगे कि कैसी बजाएंगे वो आपको बताएंगे। रुको, हाँ देखो, एक और दो और तीन, तीन स्टेप यहां है, तो आपको ताली कैसी बजानी है? 1 2 3, ठीक है, आती है सभी को? और एक साथ कैसी बजानी है? जैसे मैं बोलूंगा ना 1 तो ये वाले बजाएंगे, 2 बोलेंगे तो ये वाले बजाएंगे और 3 बोलेंगे तो ये वाले। किसकी ताली का आवाज ज्यादा है हमें पता चलेगा। कैसे बजाना है पहले बताओ। 1 2 3, 1 2 3, ओके, ट्रेनिंग हो गया। और जब कौन सा भी नंबर आ सकता है बीच में, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा, कभी 1 आएगा, तो जो बीच में बजाएगा वो फेल हो जाएगा। हाँ, समझ में आया? 1 3 1 2 1 3 2। अभी थोड़ा ऐसे करो, फिर अपने आंखों में लगाओ जरा ऐसे, और फिर अपने आप को थोड़ा शाबाशी दे दो। वाह 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 वाह, क्योंकि इतनी अच्छी बट्टी कर रहे हैं आप लोग, हाँ है ना। तो मुझे याद है, हो सकता है आपको थोड़ा बारिश के कारण तकलीफ भी हो, लेकिन भविष्य में जो भट्टियां चल रही है, चलेगी, उसके लिए पानी की जरूरत थी और वो पानी आपके भट्टे में ला दिया है। कभी भी हमें किसी भी निगेटिव चीज को हमें पॉजिटिव लेना है, कैसे लेना है? मुझे याद है हम लोग हिस्ट्री हॉल मधुबन में क्लास चल रहा था और उस समय प्रकाशमणि दादी जी ने सभी को पेड़ी की टोली, मतलब दूध का पेड़ा होता है ना, वो टोली दे रही थी, सभी को दिया और सभी मधुबन निवासी को दिया और एक को नहीं दिया। तो एक को नहीं दिया तो उसको कैसे लगेगा? हाँ, तो किसको नहीं दिया पता है? विश्वरतन दादा। अब विश्वरतन दादा जी को टोली नहीं मिली तो एक भाई ने बोला, दादा आपको तो दादी भूल गई, दादी ने आपको दिया नहीं टोली। तो उनका क्या जवाब था? उन्होंने कहा, देखो बाबा मेरा कितना ध्यान रखता है, क्योंकि बाबा को पता है अगर वो पेड़ी की टोली में खाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी, इसलिए बाबा ने दादी की भी बुद्धि घुमा दी। देखो कितनी पॉजिटिव बात है ना। तो हमारे जीवन में परिस्थितियां बहुत आती है, आती रहेगी, तो उस परिस्थिति को हमें कैसे पॉजिटिव लेना है? बाबा ने हमें इतना मेडिटेशन करना सिखाया है, बाबा ने इतनी सारी शक्तियां हमें दी है, तो उसको समय पे हम कैसे यूज करें? करते हैं यूज? आप सभी तो होशियार है, करते ही होंगे, क्योंकि परिस्थिति कोई भी आए लेकिन उससे हमें फायदा कैसे उठाना है, ये बाबा हमें सिखाता है। पॉजिटिव कैसे सोचना है वो हमें बाबा सिखाता है। तो मुझे याद है 2007 की बात है, यहां रामदेव बाबा आए थे नीचे मेडिटेशन हॉल में, उन्होंने योग कराया, और मतलब जानकी दादी ने पहले योग कराया 4 से 5.25, और फिर वो ऊपर आए स्टेज पे। उन्होंने कहा कि रामदेव बाबा हो और प्राणायाम नहीं हो, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने हमें 10-15 मिनट सभी जो हमारे ज्ञान सरोवर निवासी सभी को सिखाया, बोला आपको कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आप ये 10-15 मिनट सब थोड़ा प्राणायाम थोड़ा एक्सरसाइज करो, आप फिट रहेंगे। तो हमने वो शुरू किया, अब करीब करीब 2 मास कंटिन्यू किया। 2 मास के बाद मुझे ऐसा फील हुआ कि मेरे पेट में कुछ है करके, क्योंकि प्राणायाम करने से पेट में कोई गांठ थी वो थोड़ा धीरे धीरे छोटी होती जा रही थी और हार्ड होती जा रही थी। तो मुझे क्या लगा कि ये नाभि खिसक गई है, तो कुछ लोगों को दिखाया है, तो बोले ये नाभि तो नहीं, कुछ डॉक्टर को दिखा दो इसको। तो जब डॉक्टर को दिखाया तो उन्होंने कहा ये तो गांठ है, इसको सोनोग्राफी करो। तो धीरे धीरे प्रोसेस आगे बढ़ती गई। तो उसी समय हमारे डॉक्टर मेहता जो यहां आए थे हॉस्पिटल में, तो उनके पास गया मैं, तो उन्होंने कहा लेट जाओ इधर, वो चेक किया तो उनको डाउट आया, तो उन्होंने कहा तुम बॉम्बे चलो। तो दूसरे दिन बाबा का प्रोग्राम था करके हम बॉम्बे चले गए। तो मुंबई चले गए तो वहां बायोप्सी हुई, प्रोसेस चालू हो गया। तो बायोप्सी की बात उसमें जब रिपोर्ट आई तो रिपोर्ट क्या आई पता है, रिपोर्ट आई कि आपको पॉजिटिव है। अभी पॉजिटिव तो हमें पता ही नहीं था निगेटिव और पॉजिटिव के, तो मैंने तो पॉजिटिव ही तो होनी चाहिए रिपोर्ट ऐसे, क्योंकि बचपन से बाबा के घर में रहे, यही शुद्ध हवा शुद्ध खान, तो कभी मन में भी नहीं आया था ऐसा कुछ हो सकता है। तो मुझे तो अच्छा लगा रही पॉजिटिव था अच्छा। तो मेरे साथ जो हमारा बहन का लड़का था वो डॉक्टरी में ही थोड़ा, तो बोला पॉजिटिव बना आपको कैंसर है। तो एकदम जैसे उसने बोल दिया तो मेरे आंखों के आगे जैसे अंधेरा छा गया एकदम, ये क्या हो गया एक कैसे। हम लिफ्ट पे जा रहे थे, लिफ्ट में 6वीं मंजिल पे जाना था हमको, लिफ्ट में चलते चलते ये बात चल रही थी। मैं बाबा के साथ बात किए, बाबा ये शरीर भी आपका है मैं भी आपका हूं, अच्छा जो कुछ करना है आपको करना है, मुझे तो कुछ नहीं करना है। अगर आपको अपने साथ ले जाना है तो भले ले जाओ, क्योंकि 15-20-25 साल से तो बाबा आपकी सेवा में हूं। अगर इधर रखना है तो ढंग से रखो, बस इतना किया बस, और मैं रिलैक्स हो गया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। गए कमरे में गए सो गए, दूसरे दिन से ट्रीटमेंट शुरू हो गया कीमोथेरेपी। तो पहला केमो हुआ तो कुछ नहीं लगा, दूसरा हुआ भी कुछ नहीं लगा, क्योंकि सलाइन जैसे ऐसा लगाते हैं। अरे मैंने कहा तो बहुत डरते लोग, इसमें तो कुछ भी नहीं है। जब तीसरी केमो हुई तब देखा खुजली होने लगी, तो ऐसे थोड़ा बाल खींचे तो सारे बाल ही हाथ में आ गए। मैंने कहा ये आसर दिखाना शुरू कर दिया। उस समय मैंने एक संकल्प किया, ये देखो बाबा ने हमें इतने सालों से योग सिखाया, मेडिटेशन कराया, और हम भी बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, ऐसा करो वैसा करो, अब तुम्हारे ऊपर आई ये बात, अब तुम इसको कैसे करोगे, ये परीक्षा है और जितनी बड़ी परीक्षा है उतना आपको बड़े मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले मैंने शुरुआत किया कि मैं ये जो बीमारी है बताऊंगा नहीं, किसी को फैलाऊंगा नहीं। देखो अगरबत्ती लगाते तो उसकी खुशबू सारे हॉल में आएगी, लेकिन कहीं कुछ कीड़ों मड़ो कुछ चूहा मर गया तो उसकी बदबू सब तरफ आएगी। तो अगर मैं बता दूंगा तो सबके तरफ वो ये जाएगा, वातावरण में जाएगा। तो डॉक्टर को पता था, मेरे भाई को पता था, और मुझे, मैंने कहा और किसी को बताने की जरूरत नहीं। तो ये केमो का सिलसिला चालू हो गया। फिर 2-3-4 केमो के बाद में मधुबन आया, ज्ञान सरोवर में आया, तो सब लोग सोच रहे थे क्या हुआ क्या, मैंने कुछ नहीं ठीक है सब ठीक है करके क्योंकि बाल बेल तो उड़ गए थे सारे, लेकिन मैं अपनी खुशी गुम नहीं होने दिया। जो कुछ हुआ अच्छा ही होगा ना, और क्या, हमारे साथ बुरा तो होगा ही नहीं। तो जब यहां आए तो हमारी एक एनसीओ मीटिंग चल रही थी, तो इसमें बहुत सारे विदेशी लोग आते, तो नजर नहीं आया कहाँ गया। हर एक समय तो हम होते थे, तो एक दिन फिर जयंती बहन को पता, तो जयंती बहन कमरे में मिलने आई। अरे क्या हो गया? आप जाने के समय की हम आप नहीं मिले और हमारी यात्रा जैसे अधूरी हो जाती, तो खास मिलने आए। उन्होंने कुछ नहीं, तो छोटा सा पेपर है। तो क्या हुआ फिर जब बम्बई जाना था हमको, तो मैं दादी कॉटेज गया जानकी दादी से मिलने के लिए। तो जानकी दादी ने मेरा हाथ पकड़ा और गुलजार दादी के पास ले गए, क्योंकि गुलजार दादी भी इधर ही थे। गुलजार दादी के पास ले गए और कहा, दादी देखो ना मेरे भाई को क्या हो गया ऐसे। तो गुलजार दादी जी ने कहा, कुछ नहीं, ये छोटा सा पेपर है ना, पास कर देगा। देखो हमको पहले वरदान मिला है, ये पास कर देगा। तो अंदर थोड़ा हिम्मत भी आई, उमंग भी आया। तो ये सिलसिला जाना आना चलता रहा। फिर हम लोग मुंबई में अपना जो हॉस्पिटल में थे वहां थे, तो वहां फिर एक बार हमें याद है, गुलजार दादी कुछ काम से आए थे वहां, एक अकाउंट ऑफिस था उसका उद्घाटन करने के लिए। तो दादी जी आई और चली गई दूसरे नेपेंसी रोड करके दूसरा सेंटर था वहां। तो वहां हमारा ज्ञान स्वरूप का एक आनंद भाई थे, उन्होंने बोला कि भाई दादी जी सुभाष भाई कैसे है? उसको लगा मिल के आए होंगे। तो दादी ने, नहीं मुझे तो पता ही नहीं। तो वो भाई को बोला कि फोन लगा के दो। तो गुलजार दादी ने जो फोन पे बात किया, तो गुलजार दादी ने कहा, देखो ना हमसे एक भूल हो गई, क्योंकि मैं आई और आपको मिली नहीं हॉस्पिटल में। तो दादी जी को मैंने कहा, दादी जी आपको पता नहीं था ना, आप ये थोड़ी भूल होती। नहीं भूल तो भूल होती है ना, ऐसे बोला। फिर दादी जी ने कहा, देखो आप जल्दी से जल्दी तैयार होके अपने कर्म क्षेत्र में पहुंच जाओ, ये दूसरा वरदान। मतलब जिंदा रहेगा तभी कर्म क्षेत्र में जाएगा ना। तो ये लेकिन वो जो दादी का जो फोन था, उसमें जो पावर थी, उसमें जो कशिश थी, पूरा रात मुझे नींद नहीं आई। पूरी रात मेरे आंखों से आंसू, कि ऐसा लगा कि बाबा मेरे से बात कर रहा है। आविक्त बाबा मेरे, बाबा ने मुझे जैसे फोन किया, बाबा ने बात किया, बाबा ने वरदान दिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज कैसे हम स्वीकार करते, कैसे लेते हैं, तो वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी चीज होती, बड़ी की बड़ी परिस्थिति आएगी तो उसको आप निगेटिव में नहीं डालो उसको। तो इस सिलसिले में मैंने सोचा कि इतना समय मुझे मिला है तो मुझे क्या करना है, हा? जो कुछ करना है डॉक्टर को करना है, हा? बाबा को करना है, मुझे, मैं तो फ्री हो गया ना। तो मैंने अपना लिस्ट निकाला कि मेरे कौन से पेंडिंग काम थे। तो मैं इस बहुत सोचता था कि ज्ञान स्वरूप शुरू हो गया ना, तो इतनी सारी कॉन्फ्रेंस, इतने सारे गेस्ट मेहमान आते, तो मन में था कि जो भी बाबा का लिटरेचर है, जगदीश भाई जी ने लिखा है, वो मुझे पढ़ना है। कुछ आवेक्तवाणी है वो वीडियो देखना है, और उस समय महाभारत रामायण चल रहा तो वो देखना है, ऐसे कुछ पेंडिंग काम थे। तो मैंने वो पूरा लिस्ट बनाया और एक एक काम धीरे 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 शुरू कर दिया। और जब कीमोथेरेपी होती थी तो मुझे मतलब इतना वो दर्द होता था, सहन नहीं कर पाते थे। तो उस समय हमें जगदीश भाई जी और सूरज भाई ने एक ड्रिल सिखाई थी कि यहां से धीरे 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 परम धाम जाओ और परम धाम से धीरे धीरे वापिस आ जाओ। तो मैं ये हजारों बार, क्योंकि कहीं जा भी नहीं सकता है, उड़ भी नहीं सकता है, वीकनेस था, तो धीरे धीरे ऊपर जाना नीचे आना, ऊपर जाना, ये चलता रहता था। और एक अभ्यास किया था हमने कि एक भाई ने मुझे बताया था कि ऊपर बाबा नजदीक है और बाबा से ब्लू वायलेट किरणें मेरे ऊपर आ रही है और हमारे अंदर जो निगेटिव जर्म्स है, निगेटिव एनर्जी है, आप लोग भी कर सकते हैं कि वो भस्म हो रही है, खत्म हो रही है। तो लेटे लेटे ये हमारा काम चलता था। तो कई बार हम लोग इतना मैं डीप साइलेंस चला क्योंकि बहुत दर्द होता था तो ये अभ्यास करता था। तो इतना डीप साइलेंस जाता था तो हमारा जो भाई था लौकिक भाई, अभी आपको भोजन खिलाने की सेवा करता है तुलसी भाई, वो कभी कभी मुझे ऐसा हिलाता था, अरे ये है या नहीं है करके या चला गया करके, इतना डीप साइलेंस में। तो उसमें बाबा ने मुझे बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए, बहुत अच्छे अनुभव। और समय ऐसा निकल जाता था पता ही नहीं चलता था, कैसा लगता था कि मुझे बहुत कुछ प्राप्ति हो रही है, बहुत कुछ मिल रहा है। तो इस प्रकार से उसको मैं फायदा, और फिर मैं दूसरा हॉस्पिटल में जो एडमिट करते बैठते हैं, देखे एक बार क्या होता था, नए नए डॉक्टर आते थे, कभी कभी नई नर्स आती थी, हर केमो के पहले वहां वजन करना होता है, हाइट लेना होता है। तो जब हम कभी वजन करने वाला मशीन है उसके ऊपर खड़ा रहते थे ना, तो वो नर्स है ना डांटती थी, बोलता ये पेशेंट के लिए, आपके लिए नहीं रखा है। तो मैं बोलता है नहीं मेरा ये नाम है मैं, और सॉरी सॉरी सॉरी, मतलब इतना मतलब खुश रहते थे, इतना मस्त रहते, उनको लगता नहीं था। कभी कभी हम अपने खटिया पे बैठे मुरली पढ़ते थे, ऐसे आराम से बैठते थे, क्योंकि हमारा जी हॉस्पिटल है तो हम उनको बोलते थे हम तो हमारा ड्रेस पहन के, मतलब सफेद ड्रेस पहनेंगे। वो तो डॉक्टर आते थे, वो कभी कभी गर्म हो जाते थे, आपको इतना भी समझ नहीं, ये पेशेंट की जगह क्यों बैठते आप लोग। तो जब वो पता देखते थे अरे यही पेशेंट है, तो आजू बाजू वालों को लोगों को जाके बताते थे, देखो उस कमरे में देखो कैंसर का पेशेंट है, कैसे रहता है, देखो कितना खुश रहता है। तो बाबा ने कहा बच्चे जो है वो हॉस्पिटल में भी अपनी सेवा करते, तो इस प्रकार से अपने आप सेवा हो जाती थी। क्योंकि मुझे याद है कि जब जानकी दादी को हम एक बार मिलने गए थे तो जानकी दादी ने ऐसा किया, तुम्हारी ये बीमारी है ना बहुत सेवा करेगी। मैंने कहा कि बीमारी जिंदा भी रहे कौन सी सेवा करेगी अंदर से, लेकिन देखो वो बड़ों का वरदान, दादियों का वरदान कितना काम करता है। मुझे याद है मैं जब अपने कमरे में बैठा था तो एक दिन क्या हुआ, बाबा का प्रोग्राम नीचे शांतिवन में डायमंड हॉल में चल रहा था, तो वहा एफएम रेडियो में तो आवाज आता है, अभी बाबा का गीत बज रहा है, फिर साइलेंस होता है, फिर बाबा की मुरली शुरू हो जाती है। तो क्या हुआ, जब साइलेंस हो गया और बाबा की मुरली शुरू होने वाली थी, तो इतने में मेरे आंखों से पानी आने लगा इसे, और कमरे में ट्रांसलेट, बाबा का ट्रांसलेट था। बाबा को मैंने कहा बाबा आप 25,000 लोगों को मुरली सुनाओगे और मैं यहां अकेला बैठा हूं और आंखों से पानी आ रहा है। इतने में मैंने देखा कि वो ट्रांसलेट से बाबा मेरे धीरे 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 मेरे तरफ आते हैं, मेरे बाजू में बैठते, और पूरा सवा घंटा मैंने अनुभव किया बाबा मुझे मुरली सुना रहे। अब जब सवा घंटा पूरा हो गया, मेरे में इतना एनर्जी, इतनी शक्ति आ गई, मैं उठ के खड़ा हो गया और मैं फिर डाइनिंग में आके चक्कर लगाने लगा सब। तो सब लोग बोले अरे तुम बीमार है, यहाँ क्यों घूम रहे, तुम यहाँ क्यों। लेकिन मेरे को तो इतना नशा चढ़ा था, इतना खुशी हुई, इतना सब। तो ये भक्ति मार्ग में तो सुना था कि भगवान को बुलाओ तो पुकारो तो वो आ जाता है, तो मैंने देखा अगर बाबा को सच्चे दिल से पुकारते तो बाबा कैसे मदद के लिए दौड़े दौड़े आ जाता है। तो जीवन में पहली बार मैंने ऐसी अनुभूति की, ऐसा अनुभव किया। तो एक बार क्या हुआ, हमारे पास सुरेश ओबराय और शिवानी बहन बैठे थे भोजन करे, तो मैंने थोड़ा सा अनुभव सुना रहा था ऐसे ऐसे ऐसे। तो शिवानी बहन ने कहा ये हमको नहीं सुनाओ, इसको लिखो, स्टेप बाय स्टेप लिखो। तो मुझे अंदर हंसी आई, ये क्या लिखने की चीज है, क्या है। तो चलो बोल दिया, तो लिखना शुरू कर दिया, धीरे धीरे एक आर्टिकल बन गया, और हमारे एक भाई थे उनको दिखाया, उन्होंने थोड़ा ठीक करके ज्ञान अमृत में भेज दिया। जब ज्ञान अमृत में आर्टिकल भेज दिया तो उनको इतना अच्छा लगा, उन्होंने वर्ड रिन्यूअल इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया, फिर हिंदी, गुजराती, मराठी, सब भाषा में। मैं तो हैरान हो गया। अच्छा, तब तक तो मैं ठीक ठाक हो गया था क्योंकि करीब 2 साल लग गया इसमें। बाबा का सीजन शुरू हो गया, जैसे कमरे में जाओ कोई ना कोई बुलाने आपको, सुभाष को बुला रहे उधर क्योंकि मिलना चाहते। अरे भाई मैं तो अभी ठीक हो गया, आप क्या मिलोगे? लेकिन जो सभी का जो प्यार था, स्नेह था, वो सब खींच के ले आते थे। तो जब हमने देखा, हम या आप कीमो के बाद जब कमरे में आते थे तो हमारे किचन वाले ज्ञान सरोवर निवासी, रात को 9 से 10 महफिल जमी रहती थी, कोई चुटकुला सुना रहा है, कोई कुछ सुना रहा है, मतलब जैसे कोई माहौल ही नहीं, एकदम कुछ रिलैक्स में। तो मैंने देखा अगर बीमारी को भी अगर सही ढंग से हम उसको पॉजिटिव रूप में लेते तो उससे कितना फायदा होता है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बीमारी के समय हमारे परिवार में करीब 50-60 लोग है ना ज्ञान में है, कुछ 10-1 समर्पित भी है। तो क्या होता था, जब हमारे भाई की लड़की, बहन की लड़की, ऐसे दो 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 हमारे सेवा में आते थे। सेवा क्या, फीका खाना, कुछ ऐसे कुछ रोटी बिटी बनाते थे, फिर आर्ट गैलरी में सेवा करते थे। तो सेवा करते थे, फिर 1 मास 2 मास करीब 3 मास रहते थे। उसके बाद कि यहाँ कोई कन्याओं की बट्टी है कुछ, तो हम बोलते थे आप बैठोगे इसमें? बोला हाँ बैठेंगे। तो इस प्रकार से बीमारी में तो 4 तो ब्रह्मा कुमारी बन गई। कितनी? 4 ब्रह्मा कुमारी, 2-4 लोग ज्ञान में चल पड़े। तो देखो बाबा कैसे कमाल करता है। फिर जब ठीक ठाक हो गए तो हमारा फिर कुछ देश में जाने का प्रोग्राम बन गया, मलेशिया, थाईलैंड, फिर सिंगापुर, उसके बाद यूरोप, अमेरिका 2017 में। तो जिधर भी जाते थे ना, तो जब कुछ बाबा की बातें ज्ञान सुनाना शुरू करते थे, कोई ना कोई बीच में खड़ा होके बोलता है नहीं नहीं हमको ये नहीं सुनना है। बोले क्या सुनना है? आपका अनुभव सुनाओ, जो आपने आर्टिकल लिखा है ना वो सुनाओ। तो जिधर भी जाए यही सुनाते रहे, हमें तो कुछ प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं, जो प्रैक्टिकल है वो सुनाते थे। तो मैं एक बार है ना वैंकूवर में वो अनुभव सुना रहा था, तो बीच में से एक माता खड़ी होगी, लास्ट में सुनने के बाद लास्ट में वो सामने आए रोते रोते और बोलते पता है आपको किसने बुलाया? बोला किसने बुलाया? मैंने बुलाया आपको। मैंने कहा आपको तो मैं जानता ही नहीं। नहीं, आपका जो अनुभव मैंने पीस ऑफ माइंड जो चैनल है टीवी उसमें हमने देखा, उसमें सुना, और रोज अमृत वेला में बाबा को बोलती ये भाई से मुझे मिलना, ये भाई से, आज बाबा ने आपको हमारे सामने खड़ा कर दिया। तो देखो माताओं के अंदर कितनी पावर होती है, कितनी शक्ति होती है। मुझे याद है जब बहुत दर्द होता था शरीर में, बहुत दर्द होता था, तो बाबा के साथ मैं बातें करता था। बाबा इतने सालों तो मैंने सेवा कर लिया ना, अब मेरी क्या जरूरत है, मुझे ले चलो, ऐसे बाबा के साथ। तो बाबा जवाब देता अच्छा, बाबा को भी सिखाने लगा है कि बाबा को क्या करना है करके। तो जब ऐसी बातें होती है तो बाबा के साथ कैसी रूह रियान करना, बाबा के साथ कैसी बातें करना, ये बाबा हमें सिखाता है। और कोई भी बड़ी बड़ी परिस्थिति है कि जीवन में, ऐसा नहीं कि हमारे जीवन में कोई परिस्थिति आएगी नहीं आएगी, लेकिन उसको हमको ठीक मतलब पॉजिटिव लेना है। और कई बार हम लोग बोलते अरे मेरे सिर में दर्द हो गया, अब वो आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, फटाफट मैसेज आगे बढ़ता रहता है, आपके सिर में दर्द ठीक भी हो जाएगा लेकिन मैसेज आगे बढ़ता रहता है। इसलिए हमें लोगों को क्या बांटना है वो सोच समझ कर बांटना है, क्योंकि उसका जो वाइब्रेशन है ना, मैंने ये अनुभव किया, जो भी पूछता था ना आप कैसे हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं, मुझे कुछ हुआ ही नहीं ना, बिल्कुल ठीक हूं। जब परिवार वालों को पता चला तो वो तो फोन पे ही रोना शुरू हो गया था, रोना एकदम। बोले क्यों रो रहे आप? नहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं। मैंने किसने बोला? मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, नहीं आपको मिलना है। मैंने कहा मैं आपको मिलने आऊंगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, आप इतने दूर क्यों आते हो? तो वो लोग हैरान होते थे, सचमुच तब खराब है तबीयत या गलत मैसेज मिल गया हमको? तो उनको मैं हंसाता था, चुटकुली सुनाता था एकदम। तो वो लोग क्या होता है, दूसरों को सुनाते थे, वो दूसरों को सुनाते, तो वातावरण में क्या हो गया, पॉजिटिव वाइब्रेशन गए, ये बिल्कुल ठीक है, वो बहुत अच्छा है, इसमें कुछ नहीं। तो इस प्रकार से चीजें कैसे बदलती है वो मैंने देखा। हमने देखा कि हम टीवी तो देखते थे, लेकिन टीवी में कभी हम आएंगे कभी सोचा नहीं था। आज आपके सामने भी बैठे, वो बीमारी कारण ही बैठे उसका अनुभव सुनाने के लिए। तो कभी कभी मैं बाबा को बाबा के साथ बात करता हूं, बाबा आपने ये बीमारी दी या हमें गिफ्ट दी? हाँ, ये तो गिफ्ट है ना, आपने हमें चार ब्रह्मा कुमारी बन गई, इतने सारे लोग ज्ञान में चले, 17 कंट्री का दौरा करा दिया, हाँ सारे मैगजीन में डाला, कितना मतलब बाबा की कमाल है ना, हम तो कुछ कोई जानता ही नहीं था और बाबा ने इतनी सारी कमाल कर दिया। तो कोई भी परिस्थिति आए, हमको निगेटिव को पॉजिटिव में लेके उससे हमको क्या फायदा लेना चाहिए, है ना, क्या फायदा उठाना चाहिए, ये बाबा ने हमें सिखाया है और ये हमें कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, तो ये बाबा ने हमें सिखाया है, वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में ये बातें आनी चाहिए। और समय, अब कोई बीमार हो गया 4 दिन, डॉक्टर ने बोला अभी 4 दिन कुछ नहीं करना है, तो हम बोला अरे 4 दिन क्या करे क्या करे, उसी में चला जाता है। आप बोलो अरे 4 दिन मिला है हमें, अभी तपस्या करना है, योग करना है। और जो ये सीखा ना, ये जो अपना 2 साल जो लॉकडाउन चला, ये कोरोना है, कोई लोग खाना बनाना सीख गए, कोई योग कराना सीख गए, कोई क्लास कराना सीख गए, कोई कितनी सारी चीजें सीख गए लोग। क्यों? उनको टेक्निक आया कि हमको कैसे रहना है, हमके कैसे करना है, इसको कैसे फायदा उठाना है। हा? तो ये चीजें जब तक हम सीखेंगे हमारे जीवन में, क्योंकि बाबा ने हमें इतना ज्ञान से भरपूर किया है, इतना उत्पोत किया है, तो उसको हमें अपने जीवन में लाना है, कैसे करना है वो हमें सीखना है। हा? क्योंकि भगवान ने हमें ये जो गाड़ी दी है, आपको पता है गाड़ी की कीमत कितना है, कितना है? हा? कितना है? ये जो भगवान ने हमें गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी दी है, इसका कीमत है 225 करोड़। कितना? 225 करोड़। ये बाल लो, नाक लो, कान लो, हर एक का अगर पार्ट, अमेरिका में इसका रिसर्च हुआ एक एक पार्ट का, और देखा कि इसका कीमत इतना बनता है। और भगवान ने हमको ये फ्री दिया है, इतना अच्छा शरीर दिया है। हा? तो ये शरीर को हमें चलाना भी है। हा? कैसे चलाना है? देखो छोटी सी बात है, अगर हम मर्सिडीज गाड़ी है उसमें केरोसिन डालेंगे तो क्या होगा? हा? तो ये हमारा इतना अच्छा शरीर है, उसमें क्या डालना है वो हमारे पता है। देखो कई छोटी छोटी बात होती है, किसी को अगर आलू खाता है तो गैस हो जाता है तो छोड़ दो ना उसको, अगर किसी को पत्ता गोभी आता है जो डकार आता है या कुछ तकलीफ होता है छोड़ दो उसको, चीनी खाने से हमें तकलीफ होता है छोड़ दो उसको। हमें अपने शरीर को चलाना आना सीखना है, क्योंकि ये शरीर के साथ हम रहते इतने साल, जब से जन्म लिया तब से अभी तक हम रहते, और शरीर को चलाना हमें नहीं आ रहा है। तो जब ये बीमार हुआ तब तो मुझे रियलाइज हो गया, क्योंकि जो इंसान एक कदम भी नहीं चल सकता, बाथरूम जाने के लिए सोचना पड़ता था, अच्छा बाथरूम जाना है, बाप रे इतना दूर जाना है ऐसे, और अभी ठीक है तो कुछ सोच ही नहीं चलता, जा रहे आ रहे घूम रहे। तो परमात्मा ने ये जो हमें गाड़ी दी है और फिर इसके अंदर जो सिम डाला है ना, एकदम फ्री में, हाँ ये आत्मा, तो इसको यूज कैसे करना है हमें सीखना है। और उठते ही, आंख खुलते ही, बाबा को दिल से शुक्रिया करना है, बाबा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया। वर्तमान समय हम कुछ नहीं करते, कोई दवाई भी नहीं, सिर्फ सबकी दुआएं है। सुबह व्हीटग्रास पीता हूं एक ग्लास, वॉकिंग करता हूं, प्राणायाम करता हूं, और कुछ नहीं। और मैं ऐसा अनुभव करता हूं जो पहले था उसे भी एक्टिव। रोज कहीं ना कहीं प्रोग्राम, रोज कहीं ना कहीं सेवाएं सब चलती है। और सबसे बड़ी है, हमें खुश रहना है, हर परिस्थिति में खुश रहना है और सबको खुश करना है। ये तो बाबा ने, हमारी गुलजार दादी ये हम सबको मंत्र देती थी। क्या देती थी? थोड़ा मुस्कुराओ ना, वो थोड़े आपको पैसा देना होता है। देखो इतनी बड़ी महान विभूति, मैं उनकी एक छोटी सी बात बताता हूं। हम एक बार नीचे शांतिवन में गए थे दादी को मिलने के लिए, यहाँ विंग के प्रोग्राम चल रहे थे। तो दादी जी के रूम में बैठे, दादी के साथ लेन देन, समाचार, ऊपर प्रोग्राम क्या चला है, बारिश का ही सीजन था इसी बार। फिर दादी जी ने कहा अच्छा अच्छा बैठो, मैं अभी आती हूँ। तो हम लोग बैठे थे ऐसे, तो गुलजार दादी दो चार मिनट के वापिस आई, तो दादी के हाथ में दो प्लेट थी, उसमें नमकीन मीठा ये सारा डाल के सजा के दादी। तो जैसे दादी सामने है तो हम लोग चौंक गए, अरे दादी जी ये क्या कर रहे हो? तो दादी जी बोलती अच्छा मैं ज्ञान स्वरूप में आती तो कितना खातरी करते हो, मैं भी करूंगी। देखो दादी आपको देखने के लोग कितना तरसते हैं और आप ये, तो दादी इतना दादियों की निर्माणता। एक बाबा की बात आपको सुनाता हूँ। बाबा कानपुर गए थे, मैं समझता हूँ आशा दीदी है उनकी मम्मी पापा थे उधर। तो क्या हुआ, बाबा ने पूछा बच्ची दिखाई नहीं दे रही, तो उनके हस्बैंड ने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। अच्छा, तो बोला कि बाबा देखने जाएगा बच्ची को, माता जी थी। तो बाबा वो भाई के साथ गए वहां, तो वो बेड पे तो थोड़ा सा उठाया, तो बाबा ने साथ अंगूर लेके गए थे। तो अंगूर लेके तो बाबा एक एक अंगूर खिला रहा था उनको, माता को। जब दो चार अंगूर खिलाए तो मुंह में बीज आता है, तो माता जी इधर उधर ऐसे देख रही थी थूकना है। तो बाबा ने देखा, तो बाबा ने कहा बच्ची क्या है? कुछ नहीं बाबा, कुछ नहीं बच्ची। फिर बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने हाथ आगे किया, बच्ची इधर थूक लो, ये तुम्हारा बाप है, तुम्हारा ओबीडियंट सर्वेंट है। इतना बाबा की जानकी दादी ने बात, तो हमारे आंखों में जैसे आंसू आए कि कितना बाबा हम बच्चों को, हमारी दादियों को कितना प्यार, और वही दादियां हम सभी को कितना प्यार देती थी। हमें याद है एक बार मधुबन की बात है, प्रकाशमणि दादी के साथ काफी साल हमें रहने को मिला, उनकी पालना मिली। तो वहां लिफ्ट थी, तो एक दिन लिफ्ट खराब हो गई, तो हमारा भोजन चढ़ाने का सेवा थी। तो मैं दौड़ते दौड़ते भोली दादी के पास गया कि दादी 12 बजने वाला है और भोजन अभी तक डाइनिंग में नहीं आया। तो भोली दादी जाओ 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 बड़ी दादी के पास, बड़ी दादा दादी बना प्रकाशमणि दादी के पास जाओ। मैं दौड़ते गया प्रकाशमणि दादी के पास, दादी कुछ लेटर पढ़ रही थी। तो दादी ने क्या हुआ क्या हुआ दादी? मेरी दादी लिफ्ट खराब है और खाना अभी तक डाइनिंग में आया नहीं। तो दादी ने क्या किया होगा, मैं फोन करती हूँ, मैं ये करती हूँ? नहीं, कोई नहीं, मैं चलो ना, मैं आती हूँ ना साथ में। तो दादी जी मेरे साथ, मैं सोच रहा दादी क्या करेगी, लिफ्ट चलाएगी क्या दादी? मैं तो छोटा था, मैं तो अभी 18-19 साल का ही था, तो सोचा दादी क्या करेगी। तो जैसे दादी डाइनिंग में आए ना, तो बोले दादी आई, दादी आई, सब इकट्ठा हो गए। तो प्रकाश में दादी जी ने कहा पांडव इधर आओ, सुभाष के साथ जाओ और सब खाना उठा के लेके आओ। एक सेकंड दादी गए नीचे, सब लोग आए, 25-30 लोग, चार चार पांच बार पचेले उठे ऊपर, 5 मिनट के अंदर खाना डाइनिंग में पहुंच गया, 12 बजे का गीत बजा और भोजन शुरू हो गया। ये थी दादी के अंदर जो कला और प्यार, स्नेह। एक बार एक कुमारी जा रही थी, बाबा का दिन था, जा रही थी, तो दादी मैं जा रही हूं मुंबई की कुमारी थी, तो दादी बोलती क्या आज बाबा आने वाला है, तुम कहाँ जाएगी? दादी गाड़ी नहीं ना, ओम प्रकाश भाई ने बोला अभी 5 बजे की गाड़ी है, आप अभी निकलो करके। तो ट्रेन कितने बजे? बोला 9 बजे। बाबा की मुरली मिस नहीं करना है, दादी तुमको छोड़ने आएगी, दादी तेरे को छोड़ देगी, ऐसा कर। तो जैसे बाबा की मुरली पूरी हुई, वो कुमारी को बुलाया, बाबा से टोली दी, और दादी अपने जो ड्राइवर था गाड़ी थी, बोला जाओ इसको बच्ची को ट्रेन में बिठा के आओ। देखो चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारी और एक एक का, इसलिए दादी कभी किसी को ऐसे अपना शिष्य है ऐसा कुछ नहीं, ये मेरे साथी है, मेरी भुजाए है, और हम भी दादियों की ये बाबा की सबकी भुजाए है। तो ये तो बहुत लंबा टॉपिक है दादियों का। तो हमें क्या करना है, निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तित करके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है, और हम बहुत कुछ पा सकते हैं। तो अभी हम जब लास्ट में योग करेंगे तो एक अभ्यास करना है कि शिव बाबा मेरे ऊपर है, यही नजदीक ज्यादा दूर नहीं, और उसकी ब्लू वायलेट किरणें मेरे ऊपर आ रही है ब्रेन से धीरे 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 पूरे शरीर में, और ऐसा अनुभव करना कि मेरे पूरे शरीर ब्लू वायलेट हो रहा है और कोई भी बीमारी मेरे शरीर में नहीं, एकदम कंचन काया प्योर शरीर। मैं आपको थोड़ा मदद भी करता रहूंगा बीच बीच में। तो सब तैयार है, रेडी? बाबा से धीरे धीरे मेरे ऊपर ब्लू वायलेट किरणें आ रही है, सबसे पहले ब्रेन में, मेरा ब्रेन धीरे धीरे ब्लू वायलेट होता जा रहा है, आंखें कान मुंह गले से होते हुए छाती पेट दोनों टांगे, अब मेरा शरीर पूरा की पूरा ब्लू वायलेट हो गया है, शरीर के अंदर कोई भी निगेटिव एनर्जी नहीं है, कोई भी बीमारी का जर्म्स है वो धीरे धीरे भस्म हो रहा है, जो भी नेगेटिव एनर्जी है वो खत्म हो रही है, मेरा शरीर एकदम प्योर कंचन काया, ना इसमें निगेटिव एनर्जी है, ना कोई निगेटिव जर्म्स, एकदम प्योर। मेरा आत्मा भी धीरे धीरे पावरफुल होता जा रहा है, लाइट एकदम बढ़ती जा रही है, आत्मा की भी पावर बढ़ती जा रही है, मेरे शरीर में अब कोई भी बीमारी नहीं है। बाबा की पावरफुल रेस से एकदम जल के भस्म हो गए। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा, आपने मेरा शरीर ही पूरा प्योर बना दिया, शक्तिशाली बना दिया। मेरी आत्मा भी एकदम पावरफुल बनती जा रही है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया, तेरा लाख लाख शुक्रिया।